نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. سیرت النبی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم جو ٹاپک شروع کریں گے وہ ہے حجت الوداع. پیج نمبر ہے 354 حجت الوداع, سن 10 ہجری میں ہوا. اس سے پیچھے جو ٹاپک ہم نے کمپلیٹ کیا وہ تھا وفود کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سن 9 ہجری میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ کو 4 ماہ کی مہلت دینے کے بعد اب اس گھر میں آنے سے روک دیا جہاں کئی سالوں سے وہ من مانے طریقے سے عبادت کرتے آ رہے تھے, اور ان کو اس وقت اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ اگر ہم اللہ کے نام پہ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو مدد ہوگی. اور ہم نے یہ بھی پیچھے دیکھا کہ پچھلے تقریباً 22 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے باوجود مشرقین مکہ کو برداشت کر رہے تھے اور وہ اپنے من مانے طریقے سے وہاں حج کرتے اور کیا کرتے تھے سورۃ الاعراف میں آپ لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں گے, حتیٰ کہ وہ بالکل برہنہ ہو جاتے تھے, نیکٹ ہوتے تھے, کپڑے اتارتے اور اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے, تسلی دینے کے لیے کیا کہتے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ہم ان کپڑوں کو اللہ کے گھر آتے ہوئے اتار دیں گے. یعنی تقویٰ کا ایک خود ساختہ معیار آپ کہہ لیجئے ایسے لوگوں نے اپنا رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دیتے ہوئے سن 9 ہجری میں 4 ماہ کی مہلت کے بعد چھوڑ دیا. یہ آخری حج تھا جو مشرقین مکہ نے کیا. اس کے بعد ایک حج اگلا جو سن 10 ہجری میں ہوا جس کو آج ہم پڑھنے لگے ہیں. اس موقع پہ آپ دیکھیں گے کہ اب بالکل وہ مشن پورا ہوتا ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. آئیے کتاب سے ساتھ مدد لیتے ہیں. جب جزیرہ عرب میں دعوت کی تبلیغ مکمل ہو گئی, اس کو ہائی لائٹ کریں, دعوت کی تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی, تو اللہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے پہلے ان کی جہد پہم کہتے کنٹینیو سٹرگل, مسلسل کوشش کرنا, اس کا ثمرہ بھی دکھا دیا. ثمرہ کہتے ہیں پھل کو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی انتھک محنت اور کوشش کا پھل بھی دکھا دیا. چنانچہ آپ کو ذوالحج 10 ہجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا. یہاں چند باتیں ہمارے سمجھنے کی. پہلی بات ہے کہ ہر آغاز کا ایک اینڈ ہے. یہ آیتیں میں نے پڑھی تو میرا دل اندر سے کھچا کہ ایک وہ دن تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا سے اترے اور اقرا بسم ربک اللذی کی پکار تھی. یہ دعوت کا نقطۂ آغاز تھا کہ لوگوں کو بتا دو کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. انسان کی تخلیق کے کچھ بیچ کے مراحل کا تذکرہ کر کے اس دین کا آغاز کیا. سن 9 ہجری تک مکہ کو مشرقین سے پاک کر دیا گیا. مدینہ ایک آزاد خود مختار مسلم ریاست بن چکی تھی. مدینہ سے ارد گرد کے علاقے تبوک تک مسلمانوں کی دسترس میں آ چکے تھے, اور تبوک سے ادھر ملک شام, روم, فارس جو اس وقت کی بڑی بڑی قوتیں تھیں ان سب کے دلوں پر اسلام کا رعب طاری تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھ چکی تھی. اور ان 22 سالوں میں جانصاروں کا ایک ایسا گروہ تیار ہو چکا تھا کہ جو اللہ کے نبی کی اب جگہ لے سکتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اب نبی کو وہ وقت دکھانا تھا کہ جو بہت خوش نصیب لوگوں کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے. اور وہ کیا کہ جس چیز کو صرف ایک بھی نہ مانے, دو مان لیں, کبھی تین مان لیں, کبھی پتھر کھانے پڑے, کبھی طائف کے میدانوں میں اور کبھی اوقاز کے بازاروں میں کہ جہاں جا جا کے آپ اللہ کی بات سناتے تھے لیکن کوئی نہیں سنتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے پچھلے ہی چیپٹر میں دیکھا, کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا, فوجوں کی فوجیں لوگ مسلمان ہوئے. اور ہم پیچھے بڑی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ جس گھرانے کا ایک شخص دین پہ آتا پھر وہ جاتا تو پوری کی پوری بستی اور پورے پورے خاندان کو اسلام پہ لے آتا. اس کے لیے 22 سال صبر کرنا پڑتا ہے. मेरे और आपके लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है। नताइज से बेनियाज होकर अपनी कोशिशों का रुख ठीक रखें। 100 लोग आपकी दावत से फ़ायदा उठा रहे हैं, या 5 लोग या 2 लोग, आपने किसी की बातों को सामने नहीं रखना कि अब इतने थोड़े लोगों के लिए हम क्या करें, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। एक के लिए अगर रूल बनाएंगे ना, तो वो मल्टीप्लाई होके 100 पे भी इंशाल्लाह वही असरात देगा। लेकिन अगर आपको अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तो आप वाकई वो वक्त भी देखेंगे कि जब फिर आपको वो फल दिखेगा। हमारे यहाँ एक बात मारूफ है कि बीज डाले दादा और फल खाए पोता, यानी तीसरी जनरेशन में आकर अमूमन फल लगता है। बस वो कुछ लोग सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हुए चले जाते हैं, फिर बीच की नस्ल आती है तो वो उसके अंदर सर्वाइवल के दर्जे पे काम करती है, और तीसरी नस्ल को हम कहते हैं कि ये तो बाप दादा के हाथों से खाते पीते आए। बिल्कुल दीन के भी काम ऐसे ही होते हैं। तो हम सबको इसमें अपने दिल में ये तड़प और तलब रखनी है, और दुआ भी करनी है कि अल्लाह दुनिया से जाने से पहले हमें गलबा इस्लाम दिखा, उरूज दिखा। बंदा मोमिन दुनिया की तरक्की के लिए काम नहीं करता, यानी हम अगर आज दीन सीख रहे हैं, सबसे पहले तो सीखते हैं ना, फिर हम सीखना सिखा रहे हैं कि कैसे सिखाना है, ट्रेनिंग लेते हैं, या फिर आज हम सिखा रहे हैं। हम सब का रुख एक ही तरफ होना चाहिए, और वो क्या कि हम अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने इलाके वालों को इस दीन में दाखिल होता देखें। तो एक ऐसा इस्तेहाम और एक ऐसा रश दिखाना मकसूद था कि अल्लाह के नबी की आंखें ठंडी हो जाएं। चुनाचे इसके लिए सबसे बेहतरीन मौका हज का मौका था। आज भी हम यही देखते हैं, अगर हमारी आंखें देखती हैं कि किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो हज हुआ था और आज का हज है, स्क्रीन पे जब हम देखते हैं, लब्बैक की आवाज़ें सुनते हैं, तो उस वक़्त हमारे दिल में इतनी हूक उठती है। तो आप सोचिए कि फिर अल्लाह के नबी के लिए वो मौका कितनी खुशी का होगा कि जब आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिखाया, आपने हज का इरादा फरमाया, तो लोगों में इसका ऐलान कर दिया। यहाँ से नोट कीजिएगा, इरादा कर लिया, फिर लोगों को बताया। चुनाचे मदीना में बहुत से लोग जमा हो गए। हफ्ते के दिन, जबकि ज़िलक़ादा गुजरने में 5 दिन बाकी थे, यानी 26 ज़िलक़ादा को आपने बालों में कंघी की, तेल लगाया, तहबंद पहना, चादर ओढ़ी, और जोहर की नमाज के बाद मदीना से चल पड़े, और असर पढ़ने से पहले ज़ुलख़ुलैफ़ा पहुंच गए। ये क्या जगह जहाँ पे एहराम बांधा जाता है, यानी इसके बाद फिर एहराम की हज शुरू हो जाती है। मदीना से जब आते हैं तो ज़ुलख़ुलैफ़ा वो जगह है जिसके बाद हम एहराम के बगैर नहीं जा सकते अगर हमारी नीयत उम्रे की है। वहाँ पहुँचकर 2 रकत असर पड़ी, फिर वहीं रात गुजारी, सुबह हुई तो आपने फरमाया, आज रात मेरे रब की तरफ से एक आने वाला आया और उसने कहा, इस मुबारक वादी में नमाज पढ़ो और कहो हज में उमरा है। ये दर हकीकत हज में उमरे की इबाहत थी। इबाहत कहते हैं मुबाह होना, इजाज़त देना, यानी जायज़ होना, जिसे अहले जाहिलियत नहायत बुरा समझते थे। आप में से जिस क्लास में सेकंड पारा हो चुका है, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, आयत के साथ मैंने कोट भी करवाया था कि जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि वा तिमुल हज वल उमरत अल्लाह, बस इतने से हिस्से की तफसीर बताई थी कि मुशरिकीन एक ही सफ़र में हज और उमरा मकरू समझते थे। अल्लाह ने उसकी इजाज़त दे दी, ये वही मुकाम है। और आने वाला कौन था नबी के पास? फरिश्ता, अल्लाह की तरफ से भेजा गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर से पहले गुसल किया, सर और बदन में खुशबू लगाई, जिसमें मुश्क भी था, खुशबू थी। अब नोट कीजिएगा कि ये कब किया, खुशबू कब लगाई, जब अभी एहराम नहीं बांधा, उससे पहले। फिर तहबंद पहना, यानी आपने को आज आप शलवार कहते हैं, चादर कह लें, कुछ भी, तहबंद पहना, चादर ओढ़ी, फिर 2 रकत जोहर की नमाज़ पढ़ी, और मुसल्ले ही पर हज और उमरे का एहराम बांधा, और दोनों में किरान किया। किरान का क्या मतलब है? साथ साथ किया। करीन कहते हैं साथी को, कराना से, यानी हज और उमरा दोनों साथ किया। क्यों किया? क्योंकि उस वक़्त तक यही हुक्म था। आपको उस वक़्त तक ये मालूम नहीं था कि हज के लिए जब निकलते हैं तो उमरा करके एहराम खोल सकते हैं, जिसको हज तमत्तो कहते हैं, तो उस दौर का रिवाज यही था कि लोग जब अपने वतन से निकलते, मीकात पे पहुंचते, तो एहराम की नियत करते और उसी एहराम में उम्रे के बाद हज तक रहते, फिर हज करते, और इसको हज किरान कहते हैं। ये आपकी तफसीर की दोहराई है, दूसरे पारे में हज की तीन अकसाम में से ये बात हो चुकी। अल्लाह के नबी ने हज किरान किया था। फिर फरमाया, अल्लाहुम्मा लब्बई कभी उम्रत व हजिन, ए अल्लाह उम्रे और हज के लिए हाजिर हूँ। इसके बाद लब्बैक पुकारा, जिसके कलेमात ये थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द व नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हम बार बार हाजिर हैं, ज़रा देखिए इस जुमले को, हम बार बार हाजिर हैं, एक बार नहीं, क्योंकि एक बार आना बहुत आसान होता है, वो तो हम कहीं भी चले ही जाते हैं, कभी मुरव्वत में, कभी मजबूरी में, कभी ख्वाहिश में, लेकिन जिस चीज़ को आप बार बार करें, असल में वो आपका पैशन बन जाती है। ए अल्लाह हम बार बार हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं, हम बार बार हाजिर हैं, यकीनन तारीफ और नेमत तेरे लिए है और बादशाहत भी, तेरा कोई शरीक नहीं। और कभी फरमाते, लब्बई का इलाहल हक, माबूदे बरहक, हम बार बार हाजिर हैं। आप ज़रा इसको महसूस तो करिए, आप लोगों की क्लासेस में भी ये जुमला बोला जाता है, यानी क्लासेस के अख्तिताम, शुरू, नए सेशन पे लब्बैक होता है। अगर आप नोट करके देखें ना, तो इस एक जुमले में एक बंदा मोमिन की पूरी ज़िंदगी की तस्वीर है। कल रात को जो दर्स हुआ हमारा स्ट्रोमन में, वो यही टॉपिक था, इस्तजीबू लिरब्बिकुम, कबूल कर लो, छोड़ दो नखरे, छोड़ दो अकड़, ना कहना छोड़ दो, सरकशी छोड़ दो, बल्कि उठो और अल्लाह की तरफ आओ। आप इसको अपने दिल पर लेके सोचें और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मुझे हर वक्त तेरी हर पुकार पे लब्बई कहना आ जाए। कभी जान देनी पड़े वो तो बड़ी दूर की बात है, माल, वक्त, स्किल्स, हर एक अपने आप से पूछे, मैं अपने रब के पास किस किस तरह से जा सकती हूँ। एक होता है कि कोई आपको बुलाए, फिर तो जाना फ़र्ज़ है ना। एक होता है आप अपनी खुशी से कहते हैं, क्या मैं आ जाऊँ, क्या ये मैं काम कर लूँ। बस इन दो चीज़ों को ही आप फ़राइज़ और नवाफिल में बदल लें। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे ऊपर दीन की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हैं ना, कुछ को फ़र्ज़ कर दिया, हैव टू डू, डेफिनेटली नहीं करोगे तो गुनाह, वो तो हम कर ही लेते हैं, इल्ला माशाल्लाह जिनको वो भी मुश्किल लगे। लेकिन अपनी खुशी से क्या करती हूँ, मिसाल आपको ही दे देती हूँ, आप ही के हालात पे, कि आप सब इस कोर्स में आए, अल्लाह ने आपको चुना, आपने उस पे लब्बई कहा, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारों को कहा, हर एक के जिसकी फ्लायर पे नज़र पड़ी, जिसको किसी ने बताया, कोई टैक्स पहुँच गया, उस पे इस कोर्स की हुज्जत तमाम हो गई ना, लेकिन वो अपनी मजबूरियों और हालात की वजह से नहीं कर सके। आपने क्या किया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आ गई। अब इस हाजिरी के दो दर्जे होंगे, ये अपने लिए नोट करें। कुछ लोगों ने बस फर्जी हाजिरी की है, फ़र्ज़ के दर्जे पे आए और हाजिर हो गए, बात पूरी हुई, लेकिन क्या इससे बढ़कर भी कुछ हाजिरियाँ हैं जो आप अपनी खुशी से करें? ये है वो चीज़ जो आपके मुस्तकबिल को मुतय्यन करेगी। कहीं भी कोई क्लास होती है, कुछ भी होता है, एक ही टीचर होता है, एक ही तफसीर होती है, एक ही सब्जेक्ट्स होते हैं, हेल्पर्स एक ही जैसे होते हैं, लेकिन उसके बाद नतायज मुख्तलिफ क्यों निकलते हैं? उसकी वजह यह है कि आने वाले कुछ दो लोग सिर्फ फ़राइज़ के दर्जे पे हाजिर होते हैं, आगे रोल कॉल लग गई, बैठ गए क्लास में, लेकिन बैठे तो दिल कहीं, दिमाग कहीं, अल्लाह को तो कह दिया लब्बैक, लेकिन लोगों को भी नो नहीं कह सके, चुपके चुपके फ़ोन मैसेज, इधर देख उधर देख। तो याद रखिए कि यह अधूरी हाजिरी है। हम अपनी नेकियों को अगर इंजॉय करना चाहें, फिर मैं यहाँ बात बोल देती हूँ कि बाज़ दफ़ा सवाब की खातिर हम काम करते हैं, सवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह तो किसी का एक ज़र्रा नहीं ज़ाया करता, वो मेरे और आप जैसा कोई ना कदरा थोड़ी है कि लोगों की मेहनतों पे पानी डाल दे, ना शुक्रियों पे, उनके एक इनकार के ऊपर, ऐसा नहीं है अल्लाह। लेकिन अगर आप अपनी नेकियों को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो फिर पूरी की पूरी हाजिरी। मसलन नमाज पढ़ी, फ़र्ज़ के दर्जे पे गए, जाके जाए नमाज पे, एक टक्कर मारी, दो की ख़त्म कर दी, मार ली, कोई बड़ी बात नहीं, हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी नमाज आपको ईमान दे, तो फिर आपको पूरी हाजिरी देनी पड़ेगी। काम करते हैं ना अल्लाह के रास्ते के, तो पूछा करें खुद से, फ़र्ज़ हो रहा है पूरा, या फिर इसके अंदर मुझे मज़ा भी आ रहा है। और फितरत ने एक ऐसा चेक लगा दिया है, यकीन करें, मैं तो अक्सर अल्लाह के कामों पे गौर व फिक्र ही करती हूँ, चेक लगा हुआ है कि जब आपको नेकी करने के बाद मज़ा आ रहा है, तो समझें कि आप वो भी कर रहे हैं जो आपको करना था, और कुछ अपनी खुशी से उसमें रंग डाल रहे हैं। कुछ को कह दो कर लेते हैं, कुछ को ना को नहीं करते, दैट्स इट, बात ख़त्म। कुछ वो होते हैं जिनको कहो वो भी करते हैं, और उसके बाद जब कुछ ना भी कहा तो खुद करते हैं। बस आप इधर आ गए, क्या आपको हर दिन ये कहने की ज़रूरत है कि आप सेलफोन बंद रखें, टेक्स्ट मैसेज ना करें, तवज्जो ना बांटें अपनी, देखें जल्दी आए, वक्त में आए, कोई कहने की ज़रूरत है? और अच्छा लगे अगर आपको रोज़ आते पहले 5 मिनट की इंस्ट्रक्शंस मिले। और ये सारों के लिए, मेरे लिए भी है, और स्टाफ के लिए भी, और स्टूडेंट्स के लिए भी है। लेकिन जब हम आ जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर शैतान हमारे साथ साथ है। तो आज से नियत करें कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, और पूरे दिल से हाजिर हूँ। दुनिया को बाहर छोड़ के आए, आपकी मजबूरियाँ हो सकती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आप एक लम्हे के लिए तो ये सोचें कि अगर इस वक्त मेरे पास फ़ोन होता ही ना, तो मैं क्या करती? कोई दुनिया में जंग लग जाएगी अगर मैंने एक फ़ोन ना उठाया, क्या होगा? कोई मैं सर्जन हूँ कि अगर मैंने फ़ोन ना उठाया तो मेरे मरीज़ की जान चली जाएगी? कोई डॉक्टर हूँ? यकीन करें, मैं ये आपको डांट नहीं रही, मुझे पता भी नहीं है आप लोग क्या करते हैं। मैं तो सबको सामने रख लेती हूँ ग्लोब में जब बात करती हूँ। अगर आपने अपने इस कुरान को इंजॉय करना है ना, तो कह के आया करें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, पूरी की पूरी हाजिर हूँ। कोई मजबूरी है ना आपकी, बाहर रिसेप्शन पे आपके साथी बैठे हैं, दे दें अपना फ़ोन, दे दें उनको, और उन्हें कहें कि जो फ़ोन कोई आना है, अगर किसी का इंतज़ार है, कोई मैसेज है, जब कोई ऐसा मैसेज आए तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें। आप उनको फ़ोन स्कूल का नंबर दे दें, सीधी सी बात है, उसके भी तो पैसे देते हैं ना हर महीने, इस्तेमाल करें ताकि वो पैसे इस्तेमाल में आए। घर वालों को, बच्चों को, शोहरों को, जिसको जो कहना चाहते हैं, उन्हें कह दें कि आप मुझे स्कूल के दौरान करना चाहते हैं फ़ोन, तो स्कूल के नंबर पे करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपका मैसेज आपको पूरा इंशाल्लाह मिलेगा। फिर देखें आप इंजॉय कितना करते हैं। और आप छोड़िए क्लास को, नमाज़ी की बात कर लें, नमाज़ पढ़ रहे हैं और साथ फ़ोन है और बज रहा ट्रन ट्रन ट्रन, चले बेल तो आप छोड़ दें, आप तो वाइब्रेशन से पता चल जाता है फ़ोन आया। सच बताएं, क्या कनेक्शन ड्रॉप होता है कि नहीं अल्लाह के साथ? उठा तो सकते कोई नहीं, कुछ तो कनखियों से देख भी लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर नहीं उठा सके, लेकिन वो अल्लाह से भी नहीं रहे, अब जरा शऊर के साथ लब्बैक सुने भी और पढ़े भी।
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
बहरहाल अब आप इस जुमले की शिद्दत को दिल पे महसूस करें और ख़ुद को वहाँ ले चलें जहाँ अल्लाह के नबी हज कर रहे थे। और जब भी कभी आपको वहाँ जाने का मौका मिले, तो साथ ही दुआ करें कि अल्लाह सिर्फ वहीं बैठ के लब्बैक ना कहूँ, बल्कि बाद में आके भी करूँ।